ओम शांति। बाबा को आने में कितने दिन रह गए? 30 और 20 50 दिन। और हम बाबा के सामने जाएंगे फिर से, बाबा हमारे सामने आएंगे, आप जहां भी होंगे वहीं मिलन होगा ना। तो बाबा की आशाओं को पूर्ण करते हुए मिलन मनाना है। विनोद भाई आप तो तैयार हैं, दिख रहा है। बहुत सारी बातें जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं आप सबको याद होंगी। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। बहुत बहुत सुंदर, जितनी जितनी इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी गहराई समझ में आती जाती है कि क्यों ये बात बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इतना बड़ा कनेक्शन है, इस कनेक्शन में जो गहराई है वो समझ में आने लगती है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ये बात केवल ज्ञान की दृष्टि से हमारे पास रहेगी, हम रिपीट कर लेंगे लेकिन इसका हमें नशा नहीं होगा। व्यर्थ से मुक्त होना है हमें, बहुत सारा मुक्त होना है। बाबा भी जानते हैं हम भी जानते हैं व्यर्थ से मुक्त होना सहज है या कठिन? सहज काम नहीं है, कठिन नहीं है पर सहज काम नहीं है। ठीक है, बाबा भी जानता है हम भी जानते हैं, परंतु अगर कोई आत्मा व्यर्थ से मुक्त होने का संकल्प रख ले तो वो हो सकती है। बहुत सारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मैं अनुभव सुना दूं छोटा सा। आज ही 2 फोन ऐसे आए मुझे, एक बहन बात कर रही, मेरा 2 दिन योग बहुत अच्छा होता है, 7 घंटे तक पहुंच जाता है, 3रे दिन डाउन, योग ही नहीं लगता, क्या कारण है? ये अनुभव बहुतों को होते हैं, 4 दिन अच्छा हुआ फिर 3 दिन डाउन। हमें जानना चाहिए क्यों ऐसा होता है। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, व्यर्थ में तो नहीं है? मैं थोड़ी अच्छी भाषा से पूछा उसको, खराब भाषा नहीं। तो कहा नहीं, मैं बिल्कुल अटेंशन रखती हूँ, व्यर्थ बिल्कुल नहीं, न सुनती हूँ, मेरा अपना काम है और ज्ञान योग, मुझे और किससे कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात थी ना ये। ऐसा अगर हम अपना लक्ष्य बना लें कि संगम युग पर व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं, कौन क्या कर रहा है ये जानने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। समय जो हमसे मांग रहा है और समय को जो वरदान है, समय जो हमको दे सकता है उसको ही लेना है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं जानता और अनमोल समय को व्यतीत कर देता है उसको कुछ नहीं मिलता। सुंदर समय है भाग्य बनाने का। तो मैंने उसे बताया, एक ही लाइन में बताता हूँ, ये आज सब्जेक्ट हम नहीं ले रहे हैं। तो योग अभ्यास के लिए ब्रेन का बहुत शक्तिशाली और पवित्र होना आवश्यक है। जिसके पास ये 2 चीज नहीं होंगी उसका ब्रेन एक दिन योग करेगा, एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी, दूसरे दिन योग में मदद नहीं मिलेगी। ब्रेन को एनर्जेटिक रखना, इसलिए राइट, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, ज्यादा नहीं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, दोनों बहुत जरूरी हैं। सारा दिन अपने को हल्का रखना, छोटी सी बात से टेंस हो गए ब्रेन की शक्तियां नष्ट होने लगेंगी। सबको याद रखना, व्यर्थ संकल्प जितने जिसके पास ज्यादा हैं ब्रेन की शक्तियां उतनी ही कमजोर हैं। तो हम सभी बाबा की आशाओं को पूर्ण करते हुए उससे मिलन करेंगे। सभी अपने मन में अब ये और उमंग रख लें, उमंगे बहुत जरूरी हैं। निराशा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। कहाँ निराशा आती है ब्राह्मणों को? इस तरह कि 2 दिन पुरुषार्थ अच्छा, फिर पता नहीं 2 दिन क्या होता है, तो थक जाते हैं। जैसे आज की मुरली में था, 108 को संदेश देंगे तो कोई एक निकलेगा, थकना नहीं है। ऐसे ही पुरुषार्थ में थकान होती है, जब मन चाही सफलता नहीं मिलती हमें थकान नहीं हो, उमंग उत्साह बना रहे तो विजय हमारी होगी ही। मैं हमेशा बल्ब का रिसर्च करने वाले का उदाहरण देता हूँ ना, ऐसे बहुत वैज्ञानिकों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक काम एक प्रोजेक्ट पर पूरा जीवन लगा दिया, असफल होते रहे लेकिन निराश नहीं हुए, आखिर सफल हो गए और वो सफलता उनके लिए संसार के लिए वरदान बन गई, चमत्कार बन गई। भले उन्हें 30 साल लगे लेकिन अगर वो निराश हो जाते तो वो उसे छोड़ देते। हमें भी छोड़ना नहीं है। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे ड्रामा के ज्ञान को यूज करके हम अपने चित्त को शांत करेंगे। मैं एक चीज के लिए और सबको सावधान करना चाहता हूँ, वो सावधानी है, मैं यही शब्द यूज करूंगा। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है या नहीं, विनाश होगा या नहीं, कई सोचते हैं होगा ही नहीं, शायद बाबा तो कहते ही रहते हैं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। युग परिवर्तन का समय है, सब कुछ बदल रहा है। कभी 50 साल में युग बदला, युग माना पूरी कल्चर बदल गई, संसार में पूरे वाइब्रेशंस बदल गए, पीछे 10 सालों में बदलता आया है, अब 5 साल में बदलेगा बहुत कुछ, फिर एक एक साल में बदलेगा बहुत कुछ। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम समय के समीप पहुंच रहे हैं, हर आत्मा के किए गए विकर्म जो इधर प्रिंट हैं ब्रेन में, आत्मा में भी वो नूंद है तो ब्रेन में भी प्रिंट है, वो एक्टिव हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुतों पे आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड बीमारियां, बिना मतलब की परेशानियां, संबंधों में बहुत टकराव, मन न लगना, खुशी न होना, योग न लगना, इफेक्ट हो रहा है ब्रेन पर, जागृत हो रहा है। हमें इसमें सावधान होना है कि हम उसको न्यूट्रलाइज करते जाएं, खत्म करते जाएं, और उसकी प्रैक्टिस है सुंदर विचार और स्वमान दोनों। तो ड्रामा के ज्ञान को हम यूज करके अपने चित्त को शांत करेंगे। आप सब चिंतन करेंगे, अब हम 10 पॉइंट्स अवश्य निकालेंगे ड्रामा की जो बहुत सुंदर हैं, बाबा के महावाक्य, जो साक्षी दृष्टा हैं वही साक्षात्कार मूर्त हैं, याद है, याद कर लो साक्षी दृष्टा। और बाबा ने कहा जैसे मैं ऊपर से संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो। देखो बाबा के तो सब बच्चे हैं ना, विचार करो बाबा की क्या कहें उसे मनोस्थिति, कहा तो नहीं जाता भगवान के लिए ये शब्द नहीं है, पर सोचो आप, उसके सब बच्चे दुखी होकर उसे पुकार रहे हैं, उस पर इफेक्ट होता होगा या नहीं, नहीं होता तो क्या निष्ठुर है, नहीं, आपने ठीक कहा, उस पर तो इफेक्ट नहीं होता। हम किसी को रोता देखते हैं, बहने फटाफट इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, भले फिर ख्याल आएगा तुम क्यों रो रहे हो, रो तो वो रहे, माँ उनकी मरी, रो तुम रहे हो, लेकिन बाबा उस चीज को देखते हुए रहम आता है उनको बहुत, और वाइब्रेशंस देते हैं भक्तों को भी, जो भी उसे याद करेगा उसके पास उसके वाइब्रेशंस आएंगे अवश्य, और उसके तो बच्चे हैं, माँ बाप सब बैठे हैं यहाँ, आप जानते हैं माँ बाप की फीलिंग्स, वो कुमार कुमारियों को नहीं पता होता, माँ बाप के बच्चे अगर जरा भी दुखी हो तो माँ को क्या होता है जानती है माताएं, बच्चा रात को सो न रहा हो तो माँ भी नहीं सोएगी, दुखी भी रहेगी। बाबा भी सच्चा माता पिता है ना, प्यार भरा हुआ है उसके अंदर में, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता तो वाइब्रेशन देता है। तो साक्षी दृष्टा भी है, उसे पता है जो कुछ इनके साथ हो रहा है, इनके कर्म ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपने कर्तव्य भी करता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है लोगों का। तभी भी एक काया एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हमारे एक प्रोग्राम में आया ऊपर अभी धार्मिक सम्मेलन में, फेमस ज्योतिषी अपने एरिया का। उसको चेहरे के और शरीर के 2.5 लाख लक्षण मालूम थे, इन्हें देखकर वो सब कुछ बताता है। 2.5 लाख सोचो, 2.5 लाख कितने होते हैं। तो मेरे को थोड़ी पहचान थी, मेरे से उसका जो रिलेटिव ज्ञान में है वो मिलाने लाया। तो उसने भी एक प्रश्न पूछा और हमारे विदेशी भी ये प्रश्न पूछते हैं कि हम जो दूसरों को मदद करते हैं क्या वो परमात्मा के कार्य में, ध्यान से सुन लेंगे आप, कर्मों की गुह्य गति में इंटरफेरेंस तो नहीं है। किसी ने पाप किया है, दुखी वो हो रहा है तो होने दो ना, हम उसका दुख दूर करके उसके पाप के फल को भोगने में इंटरफियर तो नहीं कर रहे हैं। क्या उत्तर है आपका अर्जुन भाई, क्या उत्तर है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैंने उदाहरण दिया, एक लड़का तेज बाइक चला रहा है, बहुत तेज, बिल्कुल नियमों को तोड़ते हुए, अब गिरता है, टांगे टूटती हैं। उसका बाप डॉक्टर है, उसी के पास जाता है, वो सर्जन है वो हड्डियों का। तो वो कहेगा क्या कि गलती तुम्हारी है, भुगतो, या जोड़ेगा उसकी हड्डियों को, प्लास्टर चढ़ाएगा, इलाज करेगा, क्या करेगा? तो क्या डॉक्टर का उसको मदद करना उसके कर्मों के फल में इंटरफेरेंस है? नहीं। तो उनके कर्म वो जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें करना है, ये हमें याद रखना चाहिए। विदेशों में ये किसी ने पता नहीं गलत हवा फैला दी कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, भाई मदद नहीं करनी है, उसके अपने कर्मों का फल मिल रहा ना, मिलने दो। मैं से पूछा एक ने प्रैक्टिकल कि बाइक वाला गिर गया है, हम देख के चले गए, क्यों उसके कर्म है वो जाने? नहीं, उसके कर्म तो वो जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य तो हम जाने। तो हम बाबा की तरह ड्रामा को साक्षी होकर भी देखेंगे और कर्तव्यों का पालन भी करेंगे। अब हम पॉइंट्स निकालते हैं जो हमारे चित्त को शांत करे। सोच लो सभी परिवार वाले बैठे हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं, टीचर बहनें बैठी हैं, आपके साथ आपकी दूसरी बहनें हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लौकिक परिवार भी होता है, काम धंधे भी सबके चलते हैं, सेवाएं चलती हैं, अपने पर भी बहुत कुछ आता है, कभी बीमारियां आती हैं, कभी अनहोनी चीजें आती हैं, हमारे विकर्म जो हमने किए हैं उसका परिणाम सामने आता है। तो हम क्या क्या ड्रामा की बातें याद रखेंगे, क्योंकि हमें संसार का वो खेल देखना है जिसको देखना बहुत कठिन काम होगा। क्या कहते हैं बाबा, महावीर आत्माएं अचल अडोल आत्माएं विनाश के खेल को देख सकेंगी, नहीं तो देखने वाले ही मर जाएंगे, ऐसा बुरा हाल होगा। अपनों के साथ जब बहुत कुछ बीतेगा तो उसको देखना, उसको सहन करना अति कठिन हो जाएगा, लेकिन हमें करना है। तो अब पॉइंट्स निकालें, क्या क्या याद रखेंगे हम सब पॉइंट्स हैं? नथिंग न्यू का पाठ पक्का करेंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे जरा डिटेल इसका थोड़ा सा। नथिंग न्यू अर्थात वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, चाहे वो स्थापना का कार्य हो, चाहे विनाश का कार्य हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत जीवन हो, सबके साथ वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था। हल्का करेंगे मन को। कोई ये भी सोच सकता है कल्प पहले ऐसा क्यों हुआ था, अगले कल्प में न हो, प्रश्न आता है ये भी, इस कल्प में ये हुआ है हम चेंज करना चाहते हैं, अगले कल्प में ये न हो, फिक्स है सब कुछ, ये थोड़ा ही आत्मा स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, भाग्य हमारे हाथ में है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कब? आज जो हुआ वो कल के कर्मों का परिणाम था, कल माना पास्ट। अब कल के कर्मों को यदि हम बदल दें तो आज का वो सीन बदल जाएगा। लेकिन क्या किसी में ताकत है कल को बदलने की? पास्ट वाले कल को है? फ्यूचर को तो बदल सकते हैं, पास्ट को तो नहीं ना। इसलिए चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पास्ट का परिणाम है और पास्ट को हम बदल नहीं सकते। दूसरी पॉइंट लें, आप अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए, संबंधों को ध्यान में, साथियों को ध्यान में रखते हुए दो बातें याद रखेंगे। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और अपना अपना भाग्य है। भाग्य का अर्थ है कर्म और फल, ये सब का अलग अलग है। इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बात वही कि हम मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना है। माताओं को अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशानियां होती हैं। ये आजकल के समय की सबसे बड़ी, इसको सफरिंग कहें, सजाएं कहें, बहुत चल रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को लेकर काफी दुखी रहते हैं। किसी किसी का बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत आज्ञाकारी, बहुत होशियार, नाम बाला करने वाले सपूत, और किसी किसी का ऐसा है कि उनकी दिशा ही गलत है युवकों की। तो अच्छे भी हैं, अच्छे थोड़े रह गए हैं, निगेटिव होने वाले ज्यादा हो गए हैं। उनको माँ बाप की वैल्यू नहीं होती, वो जिस फ्रेंड के साथ चले गए, जिस मार्ग पे चले गए, वापिस आना नहीं चाहते, उन्हें अपना मित्र समझते हैं, माँ बाप को शत्रु मानते हैं। ऐसे में क्या करेंगी माताएं? दुखी होंगी, क्या करेंगी? दुखी होती हैं माताएं, बीमार हो जाती हैं, खुद भी बीमार हो गई, बच्चा पहले बीमार, वो मानसिक रूप से बीमार, माताजी शारीरिक रूप से बीमार, क्या होगा? समझते हैं ना क्या होगा? माताओं को अब शिव शक्ति बनना है, आत्मिक भाव बढ़ाना ही पड़ेगा। उन्हें मदद करते हुए, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देते हुए अपनी स्थिति को भी संभालना होगा। कोई कोई माताएं छोटे बच्चों से दुखी, मेरे बच्चे 8 साल के 10 साल के बड़े चंचल हैं, आपस में भी दोनों बहुत लड़ते हैं, घर में शांति नहीं, क्या करेंगी माताएं? सोच ले माताएं सभी, ये माताओं की समस्या है। माताओं के पास उत्तर तो होगा, बैठी है ना आगे आगे भी, पता उत्तर बोलो। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि बच्चे चंचल होते ही, वो तो लड़ेंगे, फिर प्यार करेंगे, फिर ठीक रहेंगे, उसमें आप परेशान न हो। वाइब्रेशंस दो, सभी अपने घरों को बदल सकते हैं अच्छे वाइब्रेशंस देकर, परेशान होकर नहीं। बाबा मदद नहीं करता, बाबा क्या करेगा? लड़ रहे तुम्हारे बच्चे और छुड़ाने बाबा आएगा? और आगे चलो, तीसरी पॉइंट, बोलते जाओ, आपको ही बोलना है, हम बोस बोलते जाओ, रामू बोलो बोलो। ड्रामा की बहुत सारी बातें हैं, आप तो ऐसे हो गए चुप जैसे कुछ पता नहीं है? नहीं, देही अभिमानी की बात इसमें नहीं है। मैं आत्मा इस ड्रामा में क्या हूँ? हीरो एक्टर हूँ, यूज करें आप इसे। तो मेरे हर एक्ट पर संसार की नजर है। और आगे सोचे, क्या सोचेंगे? बहुत सुंदर चिंतन, मुझे अपने पार्ट को एंजॉय करना है। लाओ आप इसको अपने चिंतन में, जो पार्ट मुझे मिला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे क्यों मिला ये? क्या मैं इसके योग्य था ड्रामा में? ये सब नहीं सोचना है। जो ड्रामा में मुझे पार्ट मिला है, सोच लो डायरेक्टर ने दिया है, वो बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट, परफेक्ट, उसको मुझे एंजॉय करना है। करना है या नहीं? या दूसरे के पार्ट को देख के परेशान रहना है, इनका बड़ा अच्छा, मेरा खराब? अगर ये सोचते रहेंगे तो अपने पार्ट को एंजॉय नहीं करेंगे। दूसरे के पार्ट को देखते हुए क्या सोचना है, ये सब आत्माएं एक्टर हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए वही बात जो हम सदा करते हैं, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। ये सबसे जोरदार पॉइंट है, इसके लिए अच्छे चिंतन की जरूरत है। सब निर्दोष है। प्रश्न उठता है इसमें लोगों का, क्या आतंकवादी भी निर्दोष हैं? आसाम में लोग दूसरों को मार रहे हैं, क्या वो भी निर्दोष हैं? और बहुत कुछ हो रहा है, क्या वो भी निर्दोष हैं? बच्चे अपने बाप को, पत्नी अपने पति को, माँ अपने बच्चों को मार रही है आजकल, ये कलयुग के अंत की निशानी चल रही है, सुनती है माताएं, ये सब हो रहा है। माँ अपने बच्चे को नहीं मारा करती थी, आज शुरू हो गया, वो भी दो चार साल से अच्छी तरह शुरू है भारत में भी। माँ अपने बच्चे को मार रही है, 10 साल का 12 साल का बच्चा लड़की को मार रही है, क्योंकि वो उनके प्यार में विघन डाल रहे हैं। एक ही लक्ष्य रह गया, काम वासना, बाकी सब खत्म होता जाता है, कलयुग का अंत। तो क्या ये सब निर्दोष हैं? सोच लो, जिन्हें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है वही समझ सकते हैं ये कलयुग का अंत है और अंत में यही होगा। क्या कुछ और होगा? रात दिनों दिन गहरी होती जाती है, कलयुग की रात गहरी होती जा रही है और खेल बिगड़ने वाला है। प्रश्न पूछते थे अभी मैंने क्लास कराई ना, प्रश्न आया ये करप्शन बढ़ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, आंदोलन में शामिल हो जाओ, अन्ना हजारे के साथ, रामदेव जी के साथ आप लोग भी शामिल हो जाओ। मैंने तो सीधी सी बात कही कि हमारा शामिल होना न होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो ऐसे आंदोलन में शामिल हुए हैं कि न केवल भारत से, सारे संसार से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, लेकिन कब? जब हर मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाएंगे। भ्रष्टाचार के पीछे कुछ कारण है, हमें केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लेकिन असली कारण है कि मनुष्य श्रेष्ठाचारी नहीं रहा। वो अगर हम बढ़ाएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा, नहीं तो एक का खत्म करेंगे दूसरा आ जाएगा। देवता तो आने नहीं है पॉलिटिक्स में भी, या देवता आएंगे सतयुग से रहेंगे तो यही अच्छे लोग वहां जाएंगे, वो फिर बिगड़ जाएंगे। वही लोग कहते हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, वही कहते हैं, हम तो उनकी बात सुनते हैं, वही सुना रहे हैं। तो सब निर्दोष हैं, पक्का कर दो अपने अंदर। ड्रामा का ये अंतिम सीन होगा, अंतिम सीन अति खतरनाक, सरल नहीं, सुखदायी नहीं, अति खतरनाक, ताकि हर व्यक्ति दिल से भगवान को पुकार उठे। क्या ये बात सबको जाननी चाहिए कि हे प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे खत्म करो। उस दिन मुरली में था ना, जो विनाश करेंगे उनके लिए क्या बैठेगी? ट्रिब्यूनल, सुप्रीम जज होंगे उसमें सब, सुप्रीम जज, चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम जस्टिस, यहाँ के नहीं और कोई। तो ऐसे ही ये संसार के खेल का अंतिम दृश्य बहुत भयानक होने वाला है। अंतिम दृश्य कोई एक दो मिनट का नहीं, सालों का होगा। तो हम मन से स्वीकार कर ले अभी से, यही होगा, यही होगा। क्या वो आप सब जानते हैं, समाप्त खेल अति क्रिटिकल होकर एकदम खतरनाक मोड पर जाकर एंड हो जाएगा, सुखों के दिन तो आरंभ हो जाएंगे, लेकिन ये होना है उससे पहले। तो ड्रामा के इस ज्ञान को जानते हुए सभी अपने को अब से ही तैयार करें, ताकि होने वाली घटनाओं का ब्रेन पर इफेक्ट ना जाए। बहुत अटेंशन देना इस बात पर, अब से ही अपने को फ्रेश रखना, हल्के रखना, बाबा की छत्र छाया में रखना, अपना प्रभा मंडल ओरा पावरफुल बना के चलना स्वमान से, इसकी बहुत जरूरत है। आगे चले ड्रामा का ज्ञान। बहुत अच्छी बात दूसरी जो हम सदा ही चर्चा करते हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ये भगवान वाच, भगवान के महावाक्य हैं। जो कुछ इस संसार के खेल में हो रहा है वही, बोलो वही सत्य है, वही होना चाहिए। इसे हमें याद करना पड़ेगा बार बार, नहीं तो हम सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, यज्ञ में भी क्यों हो रहा है, भगवान के कार्य में भी क्यों हो रहा है, बाबा क्यों कुछ नहीं कर रहा है। ये सब नहीं, जो कुछ हो रहा है वही, बोल दो फिर से एक बार, वही अपने को बोलना अब जरा, ठीक है। क्या समझती है मैंने, मेरे साथ जो हो रहा, आपके साथ जो हो रहा, पड़ोसियों के साथ जो हो रहा है, वो सब सत्य है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है। एक्शन इफेक्ट, रीजन इफेक्ट, ये चलता है खेल, कर्म और उसका फल, हमें इसे स्वीकार करना ही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और आगे चले, ड्रामा का हर सीन बोलो कैसा है, कल्याणकारी है। मैंने उस दिन एक बात सुनाई क्लास में, आप सबको ख्याल हो, एटम बम से एक और विनाश होगा, दूसरी ओर स्थापना होगी। एटम बम से एक और विनाश होगा, स्थापना एटम बम से नहीं होगी, दूसरी ओर ये जो वातावरण है ना सारा आकाश, जिसमें गंदगी फैल गई है, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। आग जलेगी ना खूब, आग में गंदगी जल जाती है, सिंपल भाषा, एटम बम छूटना माना अग्नि पर ज्वलित हो जाना। उस अग्नि में, इस संसार के वायुमंडल में, आकाश में जो गंदगी फैल गई है, बहुत गंदगी है इसमें, वो सब जल के खत्म, जैसे तिनके फैल गए हो, तिनके जल के खत्म, फिर से स्वच्छ आकाश हमें मिलेगा। ऐसे एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट से भी इस धरा पर भी बहुत चेंज जाएंगी, मौसम में भी बहुत बदलाव आएंगे, ये भी संभव है। मुझे उसका डिटेल पता नहीं, पर मुझे ऐसी फीलिंग है कि ग्रहों की लोकेशन में भी परिवर्तन हो जाएंगे। ये एटॉमिक एनर्जी इतनी जबरदस्त होगी, इसके विस्फोट, तो जहाँ एक और विनाश, वहीं दूसरी ओर इससे कल्याण भी होगा। और आगे चलो, इस बात पे बहुत अच्छे चिंतन की जरूरत है, बात सहज नहीं है, कह देना तो सहज है सब कुछ कल्याणकारी है, हम ठोकर खा के गिर जाए, हड्डी टूट जाए और फिर याद करें ये भी कल्याणकारी था, कर सकेंगे या नहीं, या गाली देंगे किसने ईंट गाड़ी थी यहाँ, मेरे को ही ठोकर लगनी थी। सब कुछ कल्याणकारी है, तो इस बात को हम अपने चित्त में समा लें, मैं भी कल्याणकारी। बोलो आगे आगे आगे, बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, चौथा नहीं, चौथा समय भी कल्याणकारी, इसलिए हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। समाएंगे इस बात को अपने अंदर, कहने तक न रह जाए, ये समय ही कल्याणकारी है। देखो ज्योतिषी लोग बता देते हैं ये बैड टाइम है, बुरा समय है, इस पे कुछ न करना, काम शुरू करना इतने बजे करना, लोग बहुत, कई लोग इसमें विश्वास बहुत करते हैं, तो उनको उसी अनुसार का फल मिलता है। हम इसको विश्वास में ले ले अपने, मेरे लिए ये संगम युग का समय संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है, मेरा बाबा ही कल्याणकारी है, जिसके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया है, जो मेरी जीवन नैया का खिवैया बना है, वो भी कल्याणकारी, और मैं स्वयं भी। तो हमारा कल्याण होगा ही नहीं। और आगे सोचो ड्रामा की बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। इस ड्रामा का हर सीन क्रिएटर को पसंद है, होगा भी ना पसंद। किसी ने कोई फिल्म बनाई हो, डायरेक्टर को उसकी हर चीज पसंद होगी ना, तब तो बनी ना वो स्टोरी। पसंद होगी तो हर एक एक्टर भी पसंद होगा, पार्ट, लाइट, जो कुछ भी उसमें आता है सब उसको प्रिय होंगे। तो ड्रामा का हर सीन क्रिएटर को पसंद है तो हमें भी पसंद होना चाहिए। चिंतन मिलाएंगे इसको, बहुत अच्छी बात है। ड्रामा को बदला नहीं जाता, क्यों है ही सुंदर, बदले तो उसे जो खराब हो। बहुत लोगों को संकल्प उठता है, हम तो बंध गए ड्रामा में, आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र भी है लेकिन कुछ सिद्धांतों के अधीन भी है ना, कुछ सिद्धांतों के अधीन है। हमने किसी के लिए बुरा सोचा, तुरंत हमें कैसी फीलिंग होगी, बुरी होगी अच्छी, ये सिद्धांत हो गया ना। अब कोई कहे कि मैं बुरा तो सोचूं लेकिन मुझे फीलिंग बुरी ना हो, मैं तो स्वतंत्र हूं ना, होगा ऐसा नहीं हो सकता, विधान है ये। विज्ञान ने भी इस विधान को कह दिया ना, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा ही, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये इस सृष्टि का, इस प्रकृति का एक नेचुरल नियम है। ऐसे नहीं उसने ये डाल्टन ने, किसका सिद्धांत है डाल्टन का, न्यूटन, न्यूटन, ऐसे नहीं न्यूटन ने कोई विशेष चीज बता दी हमें, ये तो प्रकृति में हो ही रहा है, उसने बताया कि ये हो रहा है। इसे विज्ञान एक खोज है, विज्ञान कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, खोज कर रहा है केवल। तो हम सभी ड्रामा के इस सीन को भी याद करें और आगे चलें। और किसी को कुछ याद आ रहा हो ड्रामा की बात, चित्त को शांत करना है हमें अपने, बिल्कुल चित्त शांत, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत सारी चीज हमें सारा दिन देखने सुनने को अपने अनुभव में आती हैं, सेवाओं के फील्ड में भी उल्टा सीधा होता रहेगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि वही होगा जो हम चाहते हैं। तो चित्त को शांत करना है, बस भाई अभी ना आने दो किसी को, बार बार आ जाता है इसके बीच में। ठीक है, सभी करेंगे चित्त शांत, ठीक है। और कोई बात किसी को याद आ रही हो ड्रामा की? हाँ, हम इस ड्रामा में बहुत चीजों को स्वीकार करें और ये पक्का कर दें अपने मन में, इस तरह से सोच लें कि जो हम चाहेंगे ऐसा नहीं संभव है सब जगह, जो हम चाहेंगे ऐसा सब जगह नहीं होगा। माताएं सोचें मेरे बच्चे वही करें जो मैं चाहती हूँ। एक बाप सोचे मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई में इतना पैसा लगाया है, ये वही करे जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या क्या है, सोचो बच्चे के साथ क्या क्या है, उसके अपने पूर्व के सभी पुण्य और पाप, एक बात, वर्तमान में क्या क्या है उसके साथ, बहुत कुछ तो वर्तमान में है, हो सकता है उसको उसका फ्रेंड सर्किल बुरा मिल गया हो, जिनका लक्ष्य अच्छा ना हो, जिनको पता ही ना हो जीवन क्या है, क्योंकि आजकल की एजुकेशन में लक्ष्य, भविष्य, आने वाली परिस्थितियां, इसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं देखता हूँ MBA कराए लड़के परेशान हो रहे हैं, उन्हें बताया ही नहीं गया कि परेशान कैसे न हो, छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सिखाया नहीं गया कि समस्याओं को कैसे सहज पार करें। तो उनके साथ अपने विचार, अपने संस्कार, अपनी इम्प्योरिटी, कर्मों का खाता, उनका फ्रेंड सर्किल, उनकी अपनी इच्छाएं, ये सब उनके साथ चल रही हैं। आपको केवल इतना पता, ये मेरा लड़का है। सोच लो अंतर कितना हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए आत्मिक दृष्टि अपनाओ, आत्मिक फीलिंग में आ जाओ। ये मेरे बच्चे हैं, ये तो छोटा सा सत्य है। असली सत्य क्या है? ये आत्माएं हैं, इनका अपना अलग पार्ट है, इनकी कर्मों की कहानी अलग है, इनके संस्कार विचार प्योरिटी इम्प्योरिटी शक्तियां कमजोरियां सब अलग अलग हैं। इस आत्मिक भाव में आ जाओ तो हम उन्हें मदद कर सकेंगे, उनका कुछ भी देख के परेशान नहीं होंगे। जहाँ केवल एक फीलिंग है ये मेरे बच्चे हैं, वहाँ माँ बाप बहुत परेशान हैं। ठीक है, और किसी को याद आ रहा कुछ ड्रामा की बात? मुझे है भूल रही है कोई चीज कि अभी कुछ बाकी रह गया है, हैं? हर एक का इंटरेस्ट भी अलग अलग है। हाँ, अलग अलग रहता है सब कुछ। वो ड्रामा में पार्ट हुआ वो आ गया। और भाई बताएंगे कुछ? हाँ नहीं, ये बात बहुत अच्छी हुई कि ड्रामा में जो सीन एक बार आ गया वो 5000 साल में दोबारा नहीं होगा। इसमें सीन रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट होने के लिए कितना समय चाहिए? 5000 साल। इसलिए जो कुछ पास्ट हो गया है, जो पास्ट हो गया है उसे भूलना है, पास्ट के इफेक्ट में नहीं रहना है। इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राय हर व्यक्ति के जीवन पर पास्ट का गहरा इफेक्ट रहता है। किसी ने अपमान किया है, असफलता हुई है, मनचाही नहीं मिली है चीजें, सफलता, परिवार, प्यार। आजकल परिवार भी नहीं मिल रहे हैं मनचाहे, विपरीत हो रहा है बहुत कुछ। मेरे पास बहुतों के अनुभव है, मैं सुना देता हूँ जरा सा। बहुत सारी कन्याएं ज्ञान में आने के बाद शादियां करती हैं, उनके माँ बाप कराते हैं या उनकी इच्छा होती है। कुछ लोग सुखी हो जाते हैं लेकिन अधिक लोग दुखी। चाहते कैसा परिवार था, मिल कैसा गया। परिवार नॉन वेज खाता है, कैसा बनाओ। शराब पीते हैं, गालियां सुनाते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे में ज्ञानी आत्मा चली गई, उसका हाल खस्ता खस्ता। इसलिए कन्याओं को बचना है जरा सा। लव मैरिज करते हैं लोग, 2-3 साल के बाद डाइवोर्स। कोई सुखी नहीं होता लव मैरिज करने वाला। लव हमेशा इमोशनल होता है जो 2-4 साल के बाद नष्ट हो जाता है। फिर ईगो काम करता है, फिर एक दूसरे के अवगुण समझ में आते हैं, खेल बिगड़ जाता है। मैं सभी को कुमार बैठे हैं बहुत राय दूंगा, शादी करनी है तो जैसे होती है अरेंज्ड मैरिज वो करो, लव मैरिज नहीं। कभी सफल नहीं होगी, जीवन दुखों से भरपूर हो जाता है। पास्ट के इफेक्ट से बचना है सबको। जैसा भी पास्ट बीता हो, अब वो 5000 साल के बाद ही आएगा। अब हमें वर्तमान को एंजॉय करना है। हमारा वर्तमान बहुत सुखद है या नहीं? ऐसा ना हो पास्ट की बुरी छाया प्रभु मिलन के सुख से हमें दूर कर रही हो। चिंतन करें सभी। ठीक बात है ना? बहुत प्रैक्टिकल सत्य है, ये सबके लिए है। कल का भी इफेक्ट आज पर आता है, अब से 5 मिनट पहले का भी इफेक्ट आज अब पर आता है। हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाएं, साथ साथ खत्म करते चलें। जैसे पास ड्रामा की रील में लिपटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और एक बात, फ्यूचर निश्चित है, इसलिए चिंताएं नहीं केवल पुरुषार्थ, चिंताएं नहीं केवल कर्तव्य पालन। कल क्या होगा ये चिंता नहीं, और सबसे पावरफुल बात है कल वही होगा जो नहीं, ये तो है ही जो ड्रामा में है। अब पावरफुल बात हमने कहा, कल वही होगा जो हम चाहेंगे, ये अलग पावरफुल बात मैंने सुनी। ये बात दीदी मनमोहिनी थी, अव्यक्त बाबा जब आते थे ना तो दीदी मुरली के बाद तुरंत बाबा से मिलती थी, छुट्टी लेके जाती थी। वो देर तक नहीं जा सकती थी, ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण उनको सोना होता था टाइम पे। तो दीदी जब बाबा से मिलती थी, बाबा गुह्य राज बताते थे, बहुत गुह्य राज बताए हुए हैं। मुरलियों में भी कहीं कहीं वो हैं और कहीं कहीं नहीं है। तो बाबा ने कहा, जैसे अब तुम ये कहते हो कि जो कुछ ड्रामा में होगा वो हो जाएगा निश्चिंत, जैसे जैसे तुम संपूर्णता के समीप आओगे तुम ये कहोगे जो हम सोचेंगे वही होगा। ये ड्रामा के ज्ञान की दूसरी गुह्यता कि हमारे संकल्प और आने वाली घटनाएं पैरेलल हो गई, समान हो गई, हम वही सोच रहे हैं जो होना है, जो हम सोच रहे हैं वही होना है, हम इतने पावरफुल हो गए हैं। ये अलग बात है, इसको समझने के लिए भी अच्छे अनुभवों की जरूरत है। लेकिन हम भविष्य को निश्चित जानते हुए अपनी विजय में निश्चय रखें। लास्ट बात यही कि कल पहले भी हमारी विजय हुई है। समझते हैं ऐसा या नहीं? कई सोचते हैं पता नहीं हुई थी या नहीं हुई थी, हमें तो नहीं लगता अभी नहीं हो रही तो कल पहले कैसे हुई होगी, उल्टा सोच रहे हैं, नहीं रिवर्स गियर लगाया हुआ, अभी नहीं विजय हो रही तो पहले कैसे हुई होगी। क्या संकल्प करेंगे? हम कल्प की विजयी आत्माएं हैं। कल पहले भी हमारी विजय हुई थी और अब भी निश्चित है। प्रश्न पूछते हैं कुमार, यही प्रश्न पूछते हैं कईयों के आते हैं कि हमारी तो विजय हुई नहीं थी। मैं पूछता हूं उनसे, किसने बताया तुम्हें कि तुम्हारी विजय नहीं हुई थी? नहीं, हमें ऐसा लगता है। तो सत्य क्या है कि जो लगता है, सोच रहे हैं ना बार बार, उसके वाइब्रेशंस विजय को दूर कर रहे हैं। अगर ये संकल्प दृढ़ हो जाए, कल पहले भी हमारी विजय हुई थी, तो ये संकल्प हमारी विजय को नजदीक लाएंगे। हम संकल्पों को चेंज करें इस तरह, हम सभी अपने चित्त को शांत करेंगे। पढ़ दो। हाँ, ड्रामा 5000 साल बाद रिपीट होगा तो पुरुषार्थ की क्या वैल्यू? पुरुषार्थ क्यों करें जब ड्रामा रिपीट होगा? पुरुषार्थ इसलिए करना है कि पुरुषार्थ भी रिपीट होगा। हो गया या नहीं? पुरुषार्थ किया वही तो ड्रामा है। ड्रामा कोई कहीं लिखा हुआ थोड़ा ही, कर्म और फल ये साइकिल जो है इसको ड्रामा कहते हैं। पाठधारी चेंज होंगे या नहीं? नहीं होंगे। जिसका प्रश्न है वो और अच्छी तरह ज्ञान की स्टडी कर ले। चेंज करके करेंगे क्या? सब पाठधारी बहुत अच्छे हैं, सबका एक्यूरेट पाठ चल रहा है, वो तो हमें लगता है ना ये खराब है। खराब नहीं है, वो हमारी देखने की दृष्टि, हमारे ज्ञान की कमी हमें आभास कराती है कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। कोई आपको तंग कर रहा हो तो लगेगा ये पाठधारी अच्छा नहीं है। ऐसा पाठधारी मिले जो हमारे साथ प्यार से रहे, पर मिले क्यों? आपने भी तो उसको तंग किया था ना पिछले जन्म में, तो उसका फल मिलेगा या नहीं? इसलिए सब कुछ एक्यूरेट चल रहा, ड्रामा एक्यूरेट एंड परफेक्ट। इसलिए इसमें न एक्टर बदलते, न सीन बदलते, न एक्टिंग बदलती, सब फिक्स है। तो सभी इसका बहुत अच्छा चिंतन रखेंगे और स्वमान रखेंगे, मैं साक्षी दृष्टा, साक्षात्कार मूर्त और बाप समान हूँ। तीन, साक्षी दृष्टा, साक्षात्कार मूर्त और बाप समान, तीनों टॉप मोस्ट समान है, जरा चिंतन करेंगे। इसके अभ्यास से हमें बहुत फायदा होगा और ये संकल्प रख लें, जैसे बाबा इस खेल को साक्षी होकर देखते हैं, मुझे भी देखना है, तब बाप समान स्थिति आएगी। तो चलें, अब समय पूरा हो गया है, सभी इसी नशे से योग करेंगे, मैं बाप समान साक्षात्कार मूर्त हूँ। ऊपर से बाप समान माना, जैसा ब्रह्मा बाबा महान तपस्वी निरंतर बाबा की किरणों के नीचे, ऐसे ही हम हैं।